महाराष्ट्र में अधर में अटकी फडणवीस सरकार के लिए कल यानी 27 नवंबर का दिन बड़ा दिन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बुधवार को फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा और इसमें गुप्त मतदान नहीं होगा। इसके अलावा भी कई और बड़ी बातें हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका इस खास सीरीज जिसका नाम है पांडे जी पॉलिटिकल हैं। मैं हूं अभिनव भट्ट और मेरे साथ हैं पांडे जी, सुमित पांडे, जिनके पास महाराष्ट्र से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी हैं। सुमित जी,
देखिए मुझे लगता है आज के फ्लोर टेस्ट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें दो तीन चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि कल जब शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस की तरफ से तकरीर की गई थी या उनकी जो दरकार थी वो ये थी कि एक तो फ्लोर टेस्ट जल्दी कराया जाए क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। दूसरा उनका यह कहना था कि फ्लोर टेस्ट जो वो प्रोटेम स्पीकर कराए क्योंकि इसमें एक विशेष परिस्थिति का यहाँ निर्माण हुआ है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई है लेकिन अभी तक असेंबली में न स्पीकर चुना गया है और न स्पीकर चुनने के बाद उन सदस्यों की शपथ हुई है, तो वोटिंग तो तभी करेंगे जब शपथ होगी
बिल्कुल
हाउस की, तो इस पर कैसे कार्रवाई की जाए। तो डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के राज्यपाल को दिया है कि आप इन तीन चार चीजों को करिए। पहली चीज तो ये कि आप असेंबली का सेशन बुलाइए, एक विशेष सत्र है, और कल शाम 5 बजे तक एक प्रोटेम स्पीकर जो आप नियुक्त कीजिए उसके द्वारा जितने भी सदस्य हैं उनकी आप शपथ कराइए और उसके तुरंत बाद कल जो है फ्लोर टेस्ट वहां पर होना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी यहां पर वो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की तरफ से कि ये गुप्त मतदान नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ए सीक्रेट बैलेट, क्योंकि सीक्रेट बैलेट में क्या है कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्रॉस वोटिंग होती है
जी,
और जनरली फ्लोर टेस्ट या इस तरह के टेस्ट कोई भी हाउस में होते हैं वो कभी गुप्त मतदान नहीं होता है। नहीं तो एक तो कोई भी आदमी किसी को भी इन्फ्लुएंस करके गुप्त मतदान कर जाएगा और मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कहां पर किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है। तो ये दोनों बातें कोर्ट ने मान ली हैं, तो कल होगा। लेकिन जहां तक प्रोटेम स्पीकर के अपॉइंटमेंट की बात है, एक कन्वेंशन ये बना रहा है कि सबसे सीनियर मोस्ट है जिन्होंने सबसे ज्यादा टर्म असेंबली में सर्व किया है, ये कन्वेंशन है, लेकिन ये कन्वेंशन कर्नाटक में भी फॉलो नहीं हुआ था, ये कोई रूल ऑर्डर नहीं है, कन्वेंशन है। तो यहाँ पर भी कुछ नाम जाएंगे और उसमें से राज्यपाल को तय करना होगा कि किसको वो प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं।
तो सुमित जी, बेसिकली जब आज कोर्ट ने ये फैसला दिया उससे पहले अपने ऑर्डर में उन्होंने कुछ पुराने उदाहरण दिए हैं, अगर आप उसके बारे में थोड़ी सी
देखिए, उसमें कई उदाहरण हैं। जनरली कोर्ट के ऑर्डर जो होते हैं वो जिरह होती है दोनों तरफ से, तो उसका एक विस्तृत रूप से कोर्ट अपने ऑर्डर में उसका बयान उसको करता है और फिर बताता है कि कैसे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जो वो एक इंटरिम ऑर्डर दे रहे हैं। तो उन्होंने उसमें कई तरह की पुराने ऑर्डर्स का जो है वो उन्होंने साइट किया है या उसका उल्लेख किया है। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण और एक इन सब में एक बेंचमार्क केस हुआ था, वो हुआ था बम्बई केस अर्ली 90s में
जी।
बम्बई साहब जो है मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के और उनकी सरकार को बर्खास्त किया गया और वो मामला जो था वो कोर्ट पर आया था सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर कोर्ट ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि उसके बाद कई ऐसे केसेस हुए, ये कही थी कि कोई भी मेजोरिटी का फैसला जो है किसी आदमी के पास नंबर्स हैं या नहीं है ये हाउस के फ्लोर पे होगा, ये गवर्नर हाउस पे नहीं हो सकता, ये सड़क पे नहीं हो सकता, ये एफिडेविट फाइल करके नहीं हो सकता, ये एक बेंचमार्क जजमेंट हो। जो भी इस तरह के केसेस कोर्ट के पास आए वहाँ पर ही साइड किया गया, इसमें भी बम्बई केस का एक वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड केस है, अभूतपूर्व केस है 1998 का। देखिए हमेशा क्या हुआ है कि एक मुख्यमंत्री की ओथ हुई है और उसने एक शपथ ली है और फ्लोर टेस्ट किया है, कंट्रोवर्सी हुई है, कोर्ट ने ऑर्डर किया
जी।
98 में दो मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और नरेश अग्रवाल और उनके साथी जगदम्बिका पाल जो कांग्रेस से टूट के गए थे वो सरकार को समर्थन कर रहे थे। रातों रात क्या हुआ कि एक बड़ा बाई इलेक्शन हुआ बड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा का संभल का, और उसमें रामगोपाल यादव जो मुलायम सिंह के कजन है वो चुनाव लड़ रहे थे और बहुत वहां पर संघर्ष वाला चुनाव था, प्रतिष्ठा का सवाल था, और एकाएक रातों रात जगदम्बिका पाल और नरेश अग्रवाल उनके साथियों ने कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और जगदम्बिका पाल को रात को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई, समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन कर दिया, सरकार गिर गई, ये मामला कोर्ट पे गया। और ऐसे परिस्थिति में कोर्ट ने कहा कि दो मुख्यमंत्री हैं तो एक तरफ हाउस में बैठे जगदम्बिका पाल और दूसरी तरफ बैठे कल्याण सिंह, यानी कि दो मुख्यमंत्री और हाउस को कहा गया इन दोनों में से एक मुख्यमंत्री चूज कर लीजिए। उस ट्रस्ट वोट में भारतीय जनता पार्टी जीती और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। फिर हाल का एक कर्नाटक का मामला आया जब येदुरप्पा को शपथ दिला दी गई, बीएस येदुरप्पा को, वहां पर भी कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि आप फ्लो टेस्ट दीजिए, फ्लो टेस्ट हुआ, लेकिन येदियुरप्पा ने एंड मौके पर आके टेस्ट जब वोटिंग होनी थी उससे पहले रिजाइन कर दिया। एक और मामला आपको याद होगा कि उत्तराखंड में हरीश रावत का हुआ था, जहां पर कि नैनीताल हाईकोर्ट जो है, जो नैनीताल में, उसने ऑर्डर पास किया था और हाउस टेस्ट कराया था। वहां पर भी ये हुआ था कि उसकी वीडियोग्राफी हुई थी और उस फ्लो टेस्ट में भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो कि आपके पार्टी छोड़ के चले गए थे फाइनेंस बिल से ठीक पहले, हुआ क्या था कि हरीश रावत फाइनेंस बिल जो एक मनी बिल है उसमें हाउस से वोट करा रहे थे, और अगर मनी बिल हाउस पे गिर जाता है तो फिर सरकार गिर जाती है। तो एकाएक ऐसा लगा कि हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा उनके 9-10 साथी वोट इसके खिलाफ वोट करना चाह रहे हैं, तो उसी तरह की अफरा तफरी में वो हाउस एडजॉर्न हो गया और ये कहा गया कि वोट ये बिल पास हो गया। ये मामला राज्यपाल के पास गया, ये मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने वहां पर भी फिर से एक बार मुंबई केस के आधार पर ही कहा कि इस पर आप हाउस में फ्लोर टेस्ट कराइए। उस फ्लोर टेस्ट को हरीश रावत ने जीता और इस दौरान पे जो कि स्पीकर थे उस टाइम पे वहां पर उत्तराखंड विधानसभा के, उन्होंने जो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार थे उनको रेबेल बांध के उनको निष्कासित कर दिया था, और दो भाजपा विधायकों के समर्थन से हरीश रावत ने वो ट्रस्ट वोट जीता।
तो सुमित जी, एक और चीज़ है कि फ्लोर टेस्ट के लिए कल सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या होने जा रहा है?
देखिए, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने जो तैयारी की है वो एक पब्लिक परसेप्शन भी बिल्ड किया है कि हमारे पास नंबर्स हैं। पिछले दो दिन में उनकी ये पूरी मुहिम की, उन्होंने पहले 154 विधायकों के एफिडेविट, स्वान एफिडेविट कोर्ट में देने की कोशिश की, जो कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की हमारे पास 144 के आंकड़े से ज़्यादा नंबर्स हैं। वो उसके बाद कल शाम को 162 सांसदों की परेड कराना, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक सीढ़ी भी खड़ी कर रहे हैं अपने विधायकों के लिए। क्योंकि देखिए, डर हमेशा ये रहता है कि हाउस में आप किसी के साथ हैं नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हाउस के भीतर जब वोटिंग होती है उस समय आप कहाँ वोट दे रहे हैं, वो वोट माना जाता है और वही तय करता है कि सरकार बचेगी कि जाएगी। अभी तो खड़े होकर बाहर कह दें कि मैं उनके साथ हूँ, फलां कहें उनके साथ हूँ, और हाउस में ऐसा कई बार हुआ है, ये कोई बड़ी अप्रत्याशित चीज़ नहीं होगी कि कोई आदमी वहाँ खड़े होकर कह दे मैं उनके साथ चला गया। ये होता है ट्रस्ट वोट में, जैसे मैंने आपको अभी आपको उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया, हरीश रावत सरकार में मुख्यमंत्री हैं, वो फाइनेंस बिल लेके आ रहे हैं और एकाएक उनके 9 विधायक खड़े हो जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मंत्री जी खड़े हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ वोट देंगे। तो हाउस के भीतर क्या होता है, तो एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस ने एक पब्लिक परसेप्शन बिल्ड करना कोशिश की है और एक दबाव भी अपने विधायकों पर बनाया है कि आपने जो एक स्वान एफिडेविट दिया था वो एक्सेप्ट हुआ हो ना हुआ हो, या आपने एक पब्लिक कमिटमेंट जो किया है उसके आधार पर ही आप वोट दें वहां पर, यहां से दाएं बाएं ना जाएं, नहीं तो पब्लिक के सामने आपको जवाबदेही होगी। तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि अल्टीमेटली डिपेंड उस बात पर करेगा, निर्भर उस पर करेगा कि फ्लोर के अंदर कौन कहां पर किस तरह से वोट देता है। और शायद इन दोनों पार्टी की सबसे अच्छी बात ये हुई है कि एक सीक्रेट बैलेट नहीं, ओपन बैलेट है, जिसमें कि सबको सामने बताना पड़ेगा कि हमने अगर विद्रोह किया है या हम अपनी पुरानी बात पर कायम हैं।